ओम शांति। सुख में सिमरन न किया, दुख में किया याद, कह कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। सुमिरन सुरत लाई के मुख ते कछु न बोल, बाहर के पट देई के अंतर के पट खोल। माला कर कर में फिरे जिब फिरे मुख माही, मनहु तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मरी जाए, सुरत समान शब्द में तही काल नहीं जाए। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हो, वारी तेरे नाम पर जित देखू तित तू। माला तो फेर रहा है योगी, परंतु बुद्धि भटक रही है। ऐसी माला फेरना कोई जाप नहीं। जाप वो जो क्या बन जाए, अजपा। जप करते 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 जप की एक अवस्था है जहां शब्द खो जाते हैं। उन शब्द को खो जाना अर्थात अजपा जाप हो जाना। आज की जो साकार मुरली है उसमें मातेश्वरी जी के महावाक्य है और मम्मा ने अजपा जाप की परिभाषा दी है। क्या कहा है? अजपा जाप की क्या परिभाषा दी है? कौन मुरली सुन कर आए? हाँ, मुरली सुना कर आए। तो मम्मा ने अजपा जाप की क्या परिभाषा दी है? मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, इस सिमरन में रहना ही क्या है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तुम भी मेरे समान ज्योति बिंदु हो, ये सिमरन ही क्या है, अजपा जाप है। एक दूसरी परिभाषा, आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा को याद करना, उसकी याद में रहना, मुख से बिना कुछ बोले, ये है अजपा जाप। इसे जो ये कहेंगे उसे क्या कहेगा? योगी और योगिनी। उसकी याद में रहना, मुख से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं, वो है अजपा जाप। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा अजपा जाप की करेंगे। महात्मा बुद्ध एक कहानी सुनाते थे जिसमें वो कहते थे कि एक बार 8 लोग नौका विहार के लिए गए, नाव पर चढ़े और एक किनारे से दूसरे किनारे गए और वो किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और उस नाव ने उनकी मदद की उस नदी को पार करने में। और वो जब उस किनारे उस तट पहुंचे तो आठों के आठों लोग उस नाव को उन्होंने बाहर निकाला और उन आठों ने उस नाव को अपने सिर पर पकड़ा और चलने लगे गांव में। क्या किया उन्होंने? 8 लोगों ने नाव को अपने सिर पर उठाया, 8 ने कोई 3-2 पीछे ऐसे करके, और गांव में चलने। लोगों को आश्चर्य लगा, उन्होंने कहा ये नाव को क्यों उठाए जा रहे हो? तो उन्होंने कहा नाव का कितना उपकार, वो हमें नैया पार कराई, नदी पार कराई, ऐसे थोड़ी ना हम छोड़ देंगे। हम तुम जैसे अउपकारी नहीं, अकृतज्ञ नहीं है। वो अहोभाव, वो ग्रेटिट्यूड का भाव है कि जिसने हमारी मदद की हम उसको भी तो लेके चले, इसलिए इन रिटर्न हम इस नाव को अपने साथ उठाकर ले चल रहे हैं। तो इन्हें ज्ञानी कहा जाएगा या मूर्ख? वैसे ही जब मंत्र तंत्र ये सब किसके लिए है? उस को पाने के लिए। वो यहां है, ये सब साधन है, साध्य नहीं। परंतु साधन को ही साध्य समझ लेना, उसी में ही फंस जाना, उसी की ही पूजा करने लग जाना, ये मूर्खता है। तो मंत्र तुमको दिया था राम 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 राम, उस मंत्र में ही फंस गए, मंत्र ही बंधन बन गया, मंत्र ही वो नाव बन गई, और वही रटते जा रहे, वही रटते जा रहे, वही रटते जा रहे। ये तोता रटन, वो हो सकता है कोई समान भी हो सकता है कि उस समान को ही रटते जा रहे, रटते जा रहे, रटते जा रहे, रटते जा रहे। रटने से नहीं होगा, उसके स्वरूप में स्थित होना है। कल की मुरली में क्या था, मेडल को क्या करना है, प्राप्त तुमने बहुत किए, अब क्या करना है, धारण करने हैं उन मेडल को। कम से कम कितने, 108 छोड़ो, एक ही धारण कर लो तो उस एक में 108 समा जाएंगे। तो अब जपा जाप, दो प्रकार के जाप है। गीता में जाप जप यज्ञ का वर्णन है, एक है ज्ञान यज्ञ, एक है जप यज्ञ। जप साधन है, परंतु सभी दुनिया में ये जप एक जैसे माया ही बन गई। हर धर्म में बताया गया है जप की महिमा। प्रायश्चित में एक मार्ग जप है, प्रायश्चित करने के लिए जप करो, परंतु व्यक्तियों ने उसे क्या कर दिया, केवल रटन, केवल रट रहे हैं जोर जोर से, जोर जोर से, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो जप दो प्रकार के हैं, एक है जिसमें ध्वनि है और दूसरा है ध्वनि रहित, एक है जिसमें शब्द है दूसरा है शब्द रहित। नानक ने कई जगह पर अजपा जाप के बारे में कहा है, इसे ही क्रिश्चियनिटी में बाइबल में द वर्ड कहा है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। शुरुआत में केवल शब्द था, बस वो शब्द ही संसार बना। किसी और जगह पर इसी अजपा जाप को सुरति कहा गया है, सुरति अर्थात निरंतर याद। तो अजपा जाप अर्थात शब्द रहित याद, अजपा जाप अर्थात ध्वनि रहित याद, अजपा याद अर्थात साउंडलेस रिमेम्बरेंस, अजपा याद अर्थात साइलेंस, अजपा याद अर्थात सॉलिट्यूड में एकांत में की हुई याद, उसमें कोई शब्द नहीं है। अजपा याद अर्थात कोई दिखावा नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई विशेष मुद्रा नहीं है जिसमें बैठे हुए, निरंतर सहज याद है, स्वरूप है जिसमें। वो बैठकर याद करना, वो याद करना, वो भी एक याद है, परंतु स्वरूप बन जाना अर्थात निरंतर याद है। बिना जपे जप, जप तो हो ही नहीं रहा है, वो जप छूट गए, माला ही छूट गई है। अब निरंतर याद, एक टिक दीपक जल रहा है, वो जो अवस्था है चेतना की, वो है अजपा जाप। इसमें बहुत सारी स्टेप्स बताते हैं। पहले तो साधक जप की माला लेता है और जपना चालू करता है, ठीक है। एक वो है जिसमें मुख से आवाज निकलती है, होठ हिलते हैं। दूसरा जो है जिसमें होठ हिलते हैं पर आवाज नहीं आती है, सेकंड स्टेप। और तीसरा, आवाज भी नहीं और होठ भी नहीं हिलते, जबकि ये तीन अवस्था है। एक तो बाबा 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 ऐसे याद करना, बाबा 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 कुछ करो, दूसरा विस्पर, सरगोशी विस्पर करना, और तीसरा कुछ भी नहीं करना। फिर तीसरी एक अवस्था है, वो गुंजन स्वतः ही हो रहा है अंदर, हम कुछ कर नहीं रहे, स्वस्फूर्णा से स्वतः ही गुंजित है वो आवाज या उसकी याद। तो वो जो अवस्था है आज की मुरली में मम्मा ने कहा, वो है अजपा जाप। तुमको ये अजपा जाप करना है, इससे विकर्म विनाश होंगे, ऐसी निरंतर याद हो। तो कैसे करें ये अजपा जाप, अब ये प्रश्न है। क्या किया जाए जिससे निरंतर याद रहे? मंजू बहन, मौन रहने का, मौन रहना जरूरी नहीं है कि अंदर बाबा की याद ही रहेगी, अटेंशन जो जप करते हैं उनका नियम होता है कि इतने बार जप होना चाहिए। वो हरे कृष्णा वाले उनके पास में माला होती है, हाथ अंदर रहता है और निरंतर जप करते रहते, इधर बात करना चालू है इधर जप चालू है, निरंतर उनका ध्यान है कि मुझे इतने राउंड पूरे करने ही है, सुबह 5 बजे से पहले इतने राउंड होने चाहिए। वो हरिदास ठाकुर था, उसने व्रत लिया था एक दिन में कितने लाख, 3 लाख, हाँ 3 लाख करने हैं पूरे एक दिन में, 3 लाख बार माला। कितना बड़ा व्रत है, महाव्रत। तो यहां पर भी हमको भी पहला तो अटेंशन, कोई व्रत जैसा लेना पड़ेगा। और क्या करेंगे, समझ और चेकिंग और ट्रेन करना पड़ेगा स्वयं को, और केयरलेसनेस से बाहर आना पड़ेगा। इसके पहले एक क्लास में हमने याद के प्रकार गिनाए थे ना, हमने चर्चा की थी बहुत पहले, चौबीस नहीं, भगवान के 24 अवतार है भक्ति मार्ग में। तो सबसे पहली याद है परिचय वाली याद और संबंध वाली याद। परिचय और संबंध के आधार पर याद, परसों की मुरली में था बाप से हर संबंध जोड़ने की क्या करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। और कल था बाकी सभी आत्माओं का संबंध, कनेक्शन, बाप से जुड़ाओ। तो जितना परिचय गहरा होगा उतनी याद गहरी होगी, जितना हमने उसके उसको गहराई से जाना होगा उतनी ही हमको याद गहरी होगी। यदि हमने उसे जाना ही नहीं, दूर दूर से जाना है, तो उसकी याद कहां रहेगी। बहुत गहराई से उसको हमने जाना है, उसकी हर बात को जाना है, समझा है, तब उसकी याद भी गहरी होगी। तो सबसे पहली याद कौन सी है, परिचय वाली याद। दूसरी याद, सुशील भाई मिल गया, पहली परिचय और संबंध वाली याद, दूसरी आएंगे उस पर, बहुत सारे हैं वो आगे है, दूसरी हाँ वो भी है। तो अलग अलग प्रकार की यादें हैं। दूसरा, पहला परिचय और निश्चय वाली याद, परिचय कितना है और उस पर निश्चय कितना है। दूसरा संबंध वाली है कि कितने उससे संबंध जोड़े हैं। तीसरी प्राप्ति वाली याद, उससे हमने कितना प्राप्त किया है, कितना उससे लिया है, और उससे जो लिया है उस ली हुई चीजों की यादें कि ये उससे मिला है इसलिए याद ज्यादा है। जैसे कोई व्यक्ति है उसको कोई दूसरा बहुत कुछ देता है तो निरंतर याद रहती है कि उसने मुझे इतना सब दिया, मैं तो कुछ भी नहीं था, उसने मुझे ये सारी चीजें दी थी। तो ये 3 प्रकार की यादें हैं। पहली परिचय, तो अगर याद को निरंतर करना है, अजपा करना है, तो परिचय को गहरा करना पड़ेगा। और भगवान को जानना, कैसे जानेंगे उसको, भगवान को कैसे जानेंगे, उसने जो कहा है वो पढ़कर। वो खुद ही बता रहा है मैं ऐसा हूं, वो खुद ही कहता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ना गुड्डी हूं ना गुड्डा हूं, मैं निराकार हूं। वो खुद ही कहता है, अपना परिचय खुद ही बैठकर दे रहा है, मैं ना हिंदू हूं ना सिंधी हूं मैं बिंदी हूं तो वो खुद ही अपना परिचय बैठकर दे रहा है। उसके लिखे हुए महावाक्यों का अध्ययन करने से उसको जान सकेंगे। जैसे कल कहा ना, चाहे ट्रेन में हो चाहे बस में हो, बाप को याद है। कहीं पर भी तुम हो, बाबा को याद है। तुम यहां इस बार शांतिवन में हो या मधुबन में हो, वो भी उसको पता है। लोकेशन उसको पता है, उसके पास जो क्या कहते हैं मैप है, गूगल मैप, वो डिवाइन मैप है उसके पास। जैसे ही वो तुमको देखता है पूरा आ जाता है, तुम कहां हो, एरिया सब दिखाई देता है उसको, यहां से इतना किलोमीटर, ये इतना किलोमीटर, वो उसको सब पता है। तो उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो उसके परिचय को गहरा करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके महावाक्यों का अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, कि उसने आज ऐसा ऐसा कहा, वो ये कह रहा है, ये उसका मन है, स्टडी माइंड ऑफ गॉड। तो पहला परिचय और निश्चय, और निश्चय उसके ऊपर कि वो आया है। दूसरा संबंध, कितने उसके साथ संबंध हमने जोड़े हैं, ऊपर ऊपर से जोड़े हैं, सब जोड़े हैं, एक जोड़ा है या दो जोड़े हैं या सभी जोड़े हैं, कैसे जोड़े हैं संबंध उसके साथ, और वो संबंध भी कितने गहरे जोड़े हैं। तीसरा प्राप्ति, प्राप्ति में वरदान हो सकते हैं, प्राप्ति में समान हो सकते हैं, वो जो मिला है उसको धारण करना है। ये तीन प्रकार की याद। फिर है चौथी और पांचवी, साथ वाली याद और नशे वाली याद। वो साथ है, उसका साथ निरंतर है, इसके लिए वो याद है, वो साथ साथ ही चल रहा है, और जो साथ चलता है वो तो याद रहता है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम जहां पर भी चले जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर अपने साथ है। योर वेरी हेयर इज नंबर्ड, क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है तुम्हारे सिर पर जो बाल है ना वो भी गिने हुए हैं, एक बाल भी कम नहीं होगा, जाओ मैंने गिन के रखे है बाल। तो कुछ भी नहीं होगा, ये विश्वास, ये निश्चय कि वो मेरे साथ है तो कुछ भी नहीं होगा, मेरा मेरी सुरक्षा का दायित्व उसका है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। नशे वाली याद, कल भी बाबा ने कहा था क्या, नशे में रहो, किसके नशे में, नाम के नशे में नहीं, किसके नशे में, मेडल के नशे में, हमको इतने मेडल मिले इसके नशे में, परंतु वो मेडल के साथ क्या होना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट, निमित्त और निर्माण के सर्टिफिकेट सहित नामी ग्रामी बनो, बिना उसके नामी ग्रामी नहीं बनना। तो नशे वाली याद, उसके बाद में प्यार वाली याद, डर वाली याद, पुकार वाली याद और उपकार वाली याद। सबसे पहले प्यार में मगन होने वाली याद, इसलिए नहीं कि उसने हमको ये दिया इसलिए प्यार कर रहे, कुछ भी नहीं दिया ना ही कुछ चाहिए, वैसे ही प्यार है, लव फॉर लव सेक, लव फॉर लव सेक, कुछ भी रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिजायर्स, वो कुछ दे तो हम उसको प्यार करें नहीं, प्यार हमारा स्वरूप है, स्वभाव है, आत्मा का स्वधर्म है परमात्मा से प्यार करना, और बिना परमात्मा के प्यार के आत्मा रुखी सुखी है। तो प्यार वाली याद, फिर डर वाली याद, डर वाली याद चाहिए क्या धीरज भाई, डर वाली याद चाहिए, थोड़ी तो चाहिए, पर कुछ कुछ धर्म केवल डर पर ही निर्भर है, पर यहां पर भी बाबा भी डराता है बीच बीच में, धर्मराज तो थोड़ा तो डर चाहिए, लोकलाज लोकपवाद, तो डर वाली याद वो भी एक याद है। उसके बाद पुकार वाली याद, दुख है, चिंता है, भय है, कोई विपदा है, ग्रहचारी है, तब आत्मा आर्त पुकार निकले हृदय से, देहधारियों के लिए नहीं, उसके लिए, वो भी याद है। ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग जैसे उससे पुकार रहे, वो ऐसा नहीं, उसकी ही याद आ रही है स्वतः, तो वो भी पुकार वाली याद है। उसके बाद उपकार वाली याद, उसने ये दे दिया, उसके उपकार, इतना सब उसने दिया है इसलिए उसकी याद। और ये सभी याद है, इनमें एक सूक्ष्म ध्वनि है जो सुनाई नहीं देती, अनहत, अनहद नाद है। इसमें दो प्रकार की ध्वनि है सृष्टि में, एक है आहत फ्रिक्शन से और दूसरा अनहद या अनाहत नाद, नॉन फ्रिक्शन। और ये जो ध्वनि होती है उसमें बहुत पावर होती है। कुछ कुछ मिलिट्रीज में स्टडीज हुई है, उसमें देखा गया एक पुल है जिसमें से ट्रेन गुजर जाती है, कुछ नहीं होता है। पर जब मिलिट्री के लोग लयबद्ध रीति से उससे गुजरते हैं, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, नहीं राइट लेफ्ट नहीं, क्या करते हैं, राइट लेफ्ट ही बोलते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, हाँ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे करके जब गुजरते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि लयबद्ध होकर नहीं गुजरना है तुमको पुल से, ताल को तोड़ दो, ताल को तोड़ दो और कैसे भी गाओ जाओ, क्योंकि जब वो लयबद्ध होकर लेफ्ट राइट करके गुजरते हैं एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है और पुल टूट जाता है, क्योंकि उस साउंड में पावर होती है। इसके लिए जब भी मिलिट्री वाले पुल से गुजरेंगे तो कैसे भी चलो आगे पीछे, लयबद्धता तोड़ दो, क्योंकि ध्वनि में शक्ति है, पावर होती है। ध्वनि में शक्ति होती है कि मौसम को बदल दे, ध्वनि में शक्ति होती है दिए जल जाते हैं, तानसेन और वो सारे बैजू बावरा, ओम की ध्वनि वो ध्वनि है जो सबसे नियरेस्ट है भगवान के पास, इसलिए तो ओम का निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि बाकी सभी जो ध्वनि है आवाज से उत्पन्न होती है, दो चीजें घर्षण करती है, फ्रिक्शन होता है तो आवाज होता है, क्या ऐसा भी कोई आवाज सृष्टि में गूंज रहा है जो बिना घर्षण के बिना फ्रिक्शन के है? उन्होंने कहा एक आवाज है और जो सबसे नियरेस्ट जो ध्वनि है अ ऊम ओम, वो ध्वनि है। और फिर लोगों ने कहा ये ओम ही भगवान है, और ओम के हजार इंटरप्रिटेशन हजार अर्थ बताए अलग अलग रीति से। तो ध्वनि में शक्ति होती है। ये जो ध्वनि है, एक ध्वनि तो कहा कि जो आवाज वाली है उसमें तो पावर है ही, पर जो दूसरी है बिना आवाज की उसमें तो सौ गुना अधिक पावर है। इसके लिए याद जो ध्वनि रहित है उसमें बहुत पावर है, जो आज अब जाप है उसमें बहुत पावर है, और इसके लिए संगठित अगर याद करे सबके सब तो पुल को तो टूटना है। अगर चाहते हो कि पुल बचे तो अलग अलग याद करो, कोई इधर बैठो कोई उधर बैठो, कोई इधर कोई अपना अपना योग करो, पर यदि सभी को एक ही संकल्प दिया जाए, एक ही पावरफुल संकल्प कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, एक ही संकल्प सबको दे दिया जाए और सबको कहा कि एक घंटे बस इसी का संकल्प, इसी का चिंतन करो, योग करो, इसी पे स्थित हो जाओ, तो संगठित ऊर्जा और ध्वनि उत्पन्न होगी अजब अजाब की, और फिर वो पुल चरमराने लगेगा और गिर जाएगा। अब कौन सा पुल? कलयुग का पुल। बाबा के एक सुंदर महावाक्य ऐसे ही याद आ रहे पुल के विषय में, बच्चे तुम्हें ब्रिज बनना है, दिलों को जोड़ना है, तुम्हें बैरियर नहीं बनना है। सुने ये महावाक्य, बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य है, बच्चे तुम्हें पुल बनना है जो दिलों को जोड़े, बैरियर नहीं बनना है, तोड़ नहीं देना है दिलों को, पुल बनना है। तो ये थी उपकार वाली याद, अर्थात उपकार तुम्हारे ओ बाबा किन शब्दों में हम मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है मैं कैसे मैं समझाऊं, गीत है। तो उपकारों का चिंतन करना यह भी याद है, तूने ये दिया, वही याद नहीं है कि मैं आत्मा हूं और वो परमात्मा है और हम परमधाम में हैं और कंबाइंड है, वही नहीं, उपकार यहां तक पहुंचा दिया मधुवन तक तेरे उपकार, निर्विघ्न यहां तक आ गए, निर्विघ्न तपस्या चल रही है, उपकार हर चीज के लिए उपकार, ओके अहोभाव धन्यवाद थैंकफुलनेस ग्रेटिट्यूड। विदेश में एक जर्नल रखते ग्रेटिट्यूड जर्नल, एक जर्नल जिसमें लिखो सुबह से लिखे, धन्यवाद सूरज उगा, धन्यवाद सूरज, चांद सितारों धन्यवाद, पेड़ पौधों तुम्हारा धन्यवाद, पत्नी पति बच्चे तुम्हारा धन्यवाद, सबका धन्यवाद। तो ये हो गई नौ। फिर है दसवीं याद, उपकार वाली उल्हाने वाली याद, बाबा को उल्हाने भी बहुत पसंद है बच्चों के। उस दिन था एक मुरली में, दो तीन हफ्ते पहले संडे की मुरली, बच्चे बाप को बच्चों के उल्हाने भी बहुत पसंद है, तो उसको उल्हाने देना। कौन से उल्हाने देंगे आरती बहन बाबा को, कौन से उल्हाने देंगे आशीष भाई?
साकार में क्यों नहीं मिले, पहले क्यों नहीं बुलाया, इतना लेट बुलाया, पहले चाहिए था हमको, और क्या बुलाने देंगे निकलेश भाई। पहले आते तो बाबा के साथ जंगल में खाने के लिए जाते, और क्या उलाने देंगे। हाँ आप हमको साक्षात्कार भी नहीं कराते, बाकी को इतने साक्षात्कार करते, फटाफट सबकी रस्सियां खींचते हो, मेरी रस्सी क्यों इतनी ढीली, मुझे मेरी भी रस्सी खींचो। और राय बहन बाबा को क्या उलाने देने, अरे नहीं वो नहीं, वो नहीं उलाने क्या देने वो बोलो। जल्दी करो और जल्दी जल्दी आया करो, जल्दी जल्दी जाया नहीं करो। और विठ्ठल भाई क्या उलाने देंगे बाबा को, लेट क्यों मिले तुम इतने, पहले मिलना चाहिए था। और सारी बीमारियां मुझे ही, मेरी बीमारियां ठीक करो, फिर देखो कैसे याद करता हूं, ऐसे याद करूंगा। और विनोद भाई कैसे उलाना, क्या दोगे बाबा को भजन के। तो उलाने भरी याद, उलाने देने हैं बाबा को, थोड़े मीठे मीठे सूक्ष्म। हाँ इतना पुरुषार्थ करते हो फिर भी याद नहीं रहती, क्या करें अब। कहते हो एक तरफ की बहुत सहज है, सहज है, जब देखो तब, यहां तो हटियोगी से भी ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है। तो उलाने वाली, फिर उसके बाद है झगड़े वाली याद। बाबा से झगड़ा, हम हॉस्पिटल में एक बहन है, तो उसने बाहर एक बार वो देखा पानी पूरी, ठीक है, बाहर जाते जाते तो एकदम इच्छा हो गई, पर पिए कैसे खाए कैसे, तो यहां बाबा की कुटिया में लेटर लिख दिया, अगर पानी पूरी शाम तक नहीं मिली तो देख लेना फिर। सब्र का बांध टूट जाएगा। बिल्कुल मिलना चाहिए, दैट्स इट। तो झगड़ा करना मिल गया। मिला उसको, उसके बाद ही तो सुना है, अगर नहीं मिला तो सुनाता ही नहीं थे। अभी नहीं है इधर, अभी आईसीयू में ड्यूटी पर है। फिर है पश्चाताप वाली याद, ये भी एक याद है। श्रीमद तोड़ना तो नहीं चाहते थे, टूट गई। उल्लंघन करना तो नहीं चाहते थे, परंतु उल्लंघन हो गया। सूक्ष्म उल्लंघन जब जब श्रीमद का होगा तब पश्चाताप, पर होना भी चाहिए पश्चाताप, पता भी तो चले कि हमसे पाप हुआ है। यही समझ रहे नहीं नहीं हमारा तो कुछ नहीं, सब ठीक है। पश्चाताप की अग्नि भी थोड़ी जलनी चाहिए बीच बीच में, कि नहीं होना चाहिए था फिर भी हो गया बाबा, पर अगली बार से नहीं होने देंगे। तो यह है पश्चाताप वाली याद। उसके बाद है साधारण याद, हल्की फुल्की याद बनी है बस, ज्यादा नहीं, कोई हल्की सी याद है, हल्की, वो कभी भी छूट सकती है, और जब छूटेगी तब कुछ भी हो सकता है, गारंटी नहीं है। फिर है सताने वाली याद, याद ऐसी आ रही है कि सता रही है उसकी याद, मिस कर रहे है उसको, दिन रात खींच रही है उसकी याद, ऐसा लग रहा है कब जाके बाबा के कमरे में जाऊं और बहुत आंसू भी सुबह दूं। फिर है अकारण याद, कोई कारण नहीं है परंतु बिना कारण के याद है और उसकी याद में स्थित है। फिर एक ऑफिशियल याद, ऑफिशियल याद अर्थात अमृत वेला, नुमाश्याम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल, ऑफिशियल बिल्कुल, कि सब बैठ रहे, नहीं बैठे तो पूछेंगे तुम कहां थे आज, डर जरूर तुमने रात में कुछ गड़बड़ तो की है जो आज दिखे नहीं, और उत्तर भी नहीं हमारे पास देने के लिए, क्या दे, सोच के आना पड़ता है प्लानिंग के साथ कि आज अमृत वेले तो थे नहीं, पूछेंगे लोग तो क्या बताऊं। फिर उसके बाद है सूक्ष्म वतन की याद, और एक है परमधाम की याद। परमधाम की सबसे पावरफुल याद है बीज रूप स्थिति, वो वास्तविक याद है एक्चुअली अगर देखा जाए तो, याद की परिभाषा में वो वास्तविक याद है। फिर है वाचा की याद, बाबा 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 मुख से करते रहो, कहा है बाबा ने, बाबा बाबा करना ये भी याद है। माताएं कुछ समझ में नहीं आता है तो मुख से बस बाबा बाबा कहते रहो, माताओं को तो शायद ही पता, पूछो किसी माता को द्वापरी में कितने जन्म होते हैं, द्वापर में उसको शायद नहीं पता होगा। तो कर्म ना याद, कर्म कर रहे डेली आर डे, कर्म है परंतु ये याद है ये कर्म किसका है, ये सेवा किसकी है, किसने दी हुई है हमको ये सेवा, किसके लिए ये सेवा कर रहे, ये विशेष सेवा बाबा ने कहा विशेष सेवा करो कोई, तो वो याद। उसके बाद में सकाश देना भी याद है, जब हम सकाश की अवस्था में दे रहे तो उससे ले रहे और इधर दे रहे, ले रहे और दे रहे, ये भी एक याद है। फिर है स्वप्न वाली याद, स्वप्न में बाबा दिखना, याद है क्या वो? याद ही कहेंगे, पर उससे विकर्म विकर्म विनाश नहीं होंगे। हाँ, फिर उसके बाद में है दूसरों को याद दिलाने वाली याद, हमको देखकर दूसरों को याद आ जाए बाबा की, जो भूल गए थे बाबा को वो देखे, अरे बाप रे ऐसा महायोगी बैठा हुआ है बाबा की याद में जैसे वो डिस्टर्ब कोई स्टेज में बाबा के कमरे में प्रवेश करे और कई दिनों से योग लगा नहीं है या किया नहीं है, अचानक घूमते फिरते बाबा के कमरे में आ गया और कोई देख रहा है, कोई बाबा की याद में बैठा है, उसने कुछ कहा भी नहीं है, ना ही उसको पता है कोई देख रहा है पीछे से, पर उसको देखकर ही याद आ गई उसको, उसको देखकर ही योगी जीवन याद आ गया, उसको देखकर ही पवित्रता जाग गई। ये कितनी बड़ी सेवा है। और 24वां ज्ञान का मनन चिंतन, साकार महावाक्य है बाबा के, एक है बाप को याद करना, दूसरा है बाप के ज्ञान को याद करना, अगला वाक्य है बाप को के ज्ञान को याद करने में ज्यादा फायदा है, बाप को याद करने से भी बाप के ज्ञान को याद करने में ज्यादा फायदा है, ये साकार महावाक्य है बाबा के। तो ऐसी ये 24 प्रकार की यादें हैं। कौन कौन सी? परिचय वाली याद, संबंध वाली याद, प्राप्ति वाली याद, साथ वाली याद, नशे वाली याद, पुकार वाली याद, उपकार वाली याद, झगड़े वाली याद, उल्हाने वाली याद, परमधाम की याद, सूक्ष्म वतन की याद, सकाश वाली याद, स्वप्न वाली याद, पश्चाताप वाली याद, स्वप्न वाली याद, कर्मना वाचा मनसा, मनसा वाचा कर्मना याद, याद दिलाने वाली याद, सताने वाली याद। तो ये अलग अलग प्रकार की चिंतन वाली याद, अलग अलग प्रकार की यादें, ये याद निरंतर रहे, इसको कहेंगे अ जपा जाप। तो मम्मा ने क्या कहा आज, मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तो बच्चे भी निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ, इसे ही अजपा जाप कहा जाता है। मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ, मतलब बीज रूप स्थिति, मतलब परमधाम की स्थिति, मतलब वो ज्वालामुखी योग, वो है अजपा जाप। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के लिए के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहेंगे, इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? संपूर्ण योग, बिना कोई मंत्र जाप के नेचुरल स्मृति, स्मृति स्वरूप की अवस्था जो है वो है अजपा जाप। योग का मतलब ही है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। इसी ज्ञान से ही योग लगता है, मुरली की लास्ट लाइन, इसी ज्ञान से ही योग लगता है। तो ज्ञान चाहिए, योग बाद में। तो ऐसा निरंतर अजपा जाप चलता रहे। ओम शांति।